अरमान ने टाइगर की ओर देखा और कहा, चलो यहाँ से, समय बर्बाद हो गया यहाँ आकर। ऐसा कहकर अरमान एक नज़र सबकी ओर देखते हुए जल्दी ही एग्जिट गेट की ओर जाने लगा। किंतु ठीक उसी वक्त पूरे हॉल की लाइट्स अचानक बंद हो गईं और अरमान जहाँ जा रहा था वहीं रुक गया और तुरंत ही एक स्पॉटलाइट एक बड़ी ही खूबसूरत परी पर पड़ी। आस्था एकदम लाल रंग की परी लग रही थी, जो बड़ी ही मनमोहक थी। आस्था का पूरा बदन उस स्पॉटलाइट में और भी ज्यादा चमकता हुआ बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस तरह से अचानक से जैसे ही स्पॉटलाइट आस्था के ऊपर पड़ी, आस्था थोड़ा सा घबरा गई। घबराहट में वो अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगी। वहां जितनी भी उस वक्त लड़कियां मौजूद थीं, आस्था की खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थीं। वहीं अरमान, जो बाहर की तरफ जा रहा था, अचानक से उसके कदम रुक गए और वो आस्था को बेतहाशा खोया खोया सा देख रहा था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक आस्था को देखना शुरू कर दिया। आस्था की खूबसूरत कमर देखकर उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा। साथ ही साथ जैसे ही उसकी नज़र आस्था की मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र पर पड़ी, तो अरमान को पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लगा। वहीं टाइगर अरमान को देखकर हैरान था। वो सोच रहा था कि वो अभी तो हम बाहर जा रहे थे, फिर अचानक से रुक क्यों गए और लाइट्स को क्या हुआ है। और जब टाइगर ने भी सब लोगों की तरह आस्था की ओर देखा, तो वो भी हैरान हो गया कि ये लड़की कौन है। आज से पहले तो इन्हें यहाँ नहीं देखा। फिर तुरंत चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हॉल की पूरी लाइट्स ऑन हो चुकी थीं, क्योंकि आस्था उस वक्त स्पॉटलाइट की जगह पर अकेली खड़ी थी, इसलिए वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। और तुरंत ध्रुव आस्था के पास आ गया। उसे साइड हक करके बोला, थैंक यू सो मच भाभी मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए। ऐसा कहकर ध्रुव ने आस्था को गले से लगाया, लेकिन ये देखकर अरमान की आंखें बेहद सर्द हो गईं। ध्रुव ने जैसे ही आस्था के कंधे पर हाथ रखा, ये देखकर अरमान की आंखें आग बरसा रही थीं। वहीं टाइगर ने केवल एक नज़र आस्था को देखा, फिर उसका पूरा ध्यान उस वक्त अपने किंग पर था और अरमान के बदलते हुए भाव देखकर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसके किंग को क्या हो गया है। तभी दादाजी की प्यार भरी आवाज सुनाई दी। दादाजी बड़ी खुशी से बोले, आस्था बेटी। तुरंत जाकर दादाजी ने आस्था को गले से लगा लिया। वहीं आस्था भी दादाजी से मिलकर बेहद खुश थी और एक एक करके दादाजी उसके पूरे परिवार से मिलने लगे और नानी माँ से मिलते हुए दादाजी बहुत खुश हुए। लेकिन आस्था की नज़र अभी तक अरमान पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि अरमान उस वक्त एग्जिट गेट की तरफ था, क्योंकि वो वहां से जाना चाहता था। लेकिन आस्था को देखकर उसके कदम खुद ब खुद ही रुक गए। वहीं आकाश आस्था को देखकर खुश था, लेकिन जैसे ही आकाश की नज़रें आस्था के ठीक पीछे खड़ी हुई रश्मि पर पड़ी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पॉटलाइट रश्मि पर भी पड़ रही थी, तब आकाश पूरी तरह से हैरान हो गया। एक पल को वो भी रश्मि की खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़रें फेर ली। तुरंत ही रश्मि भी दादाजी से जोरों शोरों से मिली और सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। तभी डेविड ने मारिया के कानों में फुसफुसाया, ये लड़की कौन है? सब लोग इसे इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं? तब मारिया एकदम शांत और ठंडे स्वर में बोली, ये है मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया। ये सुनकर डेविड पूरी तरह से चौंक गया कि मारिया को ये कैसे पता चला कि ये लड़की आस्था सिंघानिया है, जबकि उसने तो खुद अरमान की सारी जानकारी निकलवाई थी, फिर मारिया को ये कैसे पता चला? वहीं मारिया का चेहरा उस वक्त बेहद सपाट था। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे, ना दुख का, ना गम, ना खुशी, ना प्यार, ना दर्द, कुछ भी नहीं था। केवल सपाट चेहरा लिए वो बारी बारी से सबको देख रही थी। तभी मारिया की नज़र टाइगर पर जाकर थम गई। एक पल को उसने टाइगर को देखा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी आंखें टाइगर पर से हटा ली और अरमान की ओर देखकर वो डेविड से बोली, अब तुम्हें इस बात के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला कि ये लड़की आस्था अरमान सिंघानिया है। मुझे लगता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो करो, तब तक मैं पार्टी एंजॉय कर लेती हूँ। ऐसा कहकर अपनी हाई हील पर चलकर जल्दी ही मारिया छोटे से बार में चली गई। वहां जाकर ड्रिंक करने लगी। डेविड अब मारिया का इस तरह का व्यवहार देखकर पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान जल्दी ही अरमान पर चला गया और वो कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां से वो आराम से बैठकर अरमान पर हमला कर सके। अब जैसे ही आस्था पार्टी में आई, ध्रुव तो खुश हो ही गया, लेकिन ध्रुव को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि कोई उसे अपनी गहरी नजरों में लिया हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही जैसे ही उसने अपने आसपास अपनी नजरें घुमाकर देखा, तो उसकी नजर अरमान पर पड़ी, तो तुरंत पीछे हटकर आस्था से दो कदम पीछे खड़ा हो गया। तभी टाइगर अरमान के पास गया और अनुमति मांगते हुए बोला, किंग अब हम चले। लेकिन अरमान टाइगर को बिना किसी जवाब दिए तुरंत जाकर एक जगह राजाओं की तरह बैठ गया और आस्था को देखने लगा। आस्था की नजरें अभी तक अरमान पर नहीं गई थीं, वो तो बस खुशी से सबके साथ मुस्कुरा रही थीं। सबको एक साथ वहां देखकर वो बहुत खुश थीं, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका सबके साथ एक गहरा सा लगाव हो गया था, तो उसे उस वक्त वहां आकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी आहान खुशी के मारे झूमते हुए बोला, भाभी चलो ना केक कटिंग करते हैं। तब आस्था हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन ध्रुव जी हम भला केक कैसे काट सकते हैं? आपका बर्थडे है,
प्लीज आप अपना केक काटिए। तब ध्रुव कुछ पल सोचकर बोला, हाँ हाँ ये मेरा बर्थडे है, लेकिन आपके आने के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने आस्था को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया, जिसे देखकर प्रियंका जल गई। और प्रियंका सोचने लगी कि इस लड़की के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, पता नहीं इसने किस तरह से इन सबको अपने कब्जे में लिया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी प्रियंका जल्दी ही बहाने से एक जगह जाकर खड़ी हो गई और वहां पर कुछ जूस रखे हुए थे। उस जूस में उसने जल्दी ही कुछ दवाइयों की बूंदें डाल दी। वो बूंदें कुछ और नहीं बल्कि गहरे नशे की दवाइयां थी जिन्हें वो आस्था को पिलाना चाहती थी। और अगर आस्था एक बार वो जूस पी लेती है तो उसके बाद आस्था की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो अपने पूरे कपड़े वहां उतारने पर मजबूर हो जाएगी। और प्रियंका कहीं ना कहीं आस्था को उस पार्टी में नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग आस्था को इतना ज्यादा महत्व दें। इसीलिए उसने आस्था को पूरी महफिल में बेइज्जत करने का प्लान बनाया था। वहीं आस्था इस बात से बेखबर कि इस वक्त दो गहरी नजरें उसे ही देख रही हैं, वो केवल मुस्कुराकर सबसे बात कर रही थी। तभी अचानक डॉक्टर रश्मि की निगाह दादाजी के ठीक पीछे खड़े हुए आकाश पर गई। आकाश को देखकर डॉक्टर रश्मि ने अपनी नजरें फेर ली, जिन्हें आकाश ने महसूस कर लिया था, लेकिन उसने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो जानता है कि डॉक्टर रश्मि उससे नाराज है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी बड़ा सा एक केक लाया गया और ध्रुव ने जल्दी से केक काटकर सबसे पहले टुकड़ा दादाजी को खिलाया, उसके बाद आस्था को खिलाया। आस्था बहुत मुस्कुरा रही थी। एक तो आस्था इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसे देख रहा था, खासकर उसकी खूबसूरत पतली कमर को, जहां पर अरमान सिंघानिया की भी नजर थी। और वो पूरी तरह से बेताब होकर अभी आस्था की खूबसूरत कमर को देख रहा था, तो कभी उसके खूबसूरत होठों को देख रहा था। आस्था से वो दो तीन दिन ही दूर था, लेकिन आज आस्था को देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो उससे कितने सालों से दूर हो। और वो अपनी भरपूर निगाहों का इस्तेमाल करते हुए आस्था को देखकर अपनी प्यास बुझा रहा था।
जल्दी ही केक कट हो चुका था और वहीं प्रियंका जल्दी ही वो दो ड्रिंक अपने हाथ में लिए आस्था के पास आकर बोली, अरे आस्था, मैं कब से देख रही थी, तूने कुछ खाया ही नहीं। पहले इसे पियो, फटाफट से कुछ ऑरेंज जूस पी लो, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर जूस का ग्लास उसने आस्था के हाथों में थमा दिया। लेकिन नानी माँ, जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग थीं, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच और दुनिया उन्होंने देख रखी थी, प्रियंका का एकदम से इतना मीठा होना उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। और तुरंत ही नानी माँ ने वो जूस आस्था के हाथ से लिया और बोली, अरे प्रियंका बेटी, अभी अभी तो आई है, और वैसे भी अगर ये जूस नहीं पीती तो तू जानती है ना इसे सर्दी हो जाती है, वैसे भी ये ठंडा जूस बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसे क्या सूट करता है क्या नहीं, जब इसे कुछ खाना पीना होगा तो मैं इसे खिला लूंगी, तू फिक्र मत कर, तू ही पी ले इस जूस को। ऐसा कहकर नानी माँ ने तुरंत वो जूस वापस से प्रियंका के हाथों में थमा दिया। अब तो प्रियंका का गुस्सा बढ़ चुका था और वो मन में बड़बड़ाने लगी, आखिर ये खुशमिजाज बुढ़िया कब तक इस आस्था को बचाएगी। ये सोचते हुए प्रियंका अपने पैर पटकते हुए, प्रियंका ने वो जूस का ग्लास वापस ले जाकर वहीं काउंटर पर रख दिया और सब कुछ खड़ी होकर पार्टी देखने लगी। और प्रियंका उसके बाद अपनी माँ के पास चली गई और दोनों माँ बेटी अच्छी तरह से पार्टी के बढ़िया स्वादिष्ट खाने का लुत्फ लेने लगी और सेल्फी और रील्स वगैरह बनाकर पोस्ट करने लगी। तभी केक कटिंग के बाद कुछ कपल्स डांस स्टार्ट हो चुका था। आहान डॉक्टर रश्मि का हाथ पकड़कर उसे फ्लोर पर ले आया और हंसते हुए बोला, दीदी आप मेरे साथ डांस करें प्लीज, ऐसा बोलकर वो डांस फ्लोर पर डांस करने लगा। और वहीं ध्रुव ने आस्था को डांस करने के लिए कहा, हालांकि ध्रुव जानता था कि वो आग से खेल रहा है, लेकिन जानबूझकर वो अरमान का जुनून बढ़ाना चाहता था। वो जानबूझकर अरमान को ईर्ष्यालु महसूस कराना चाहता था ताकि अरमान को अपनी भावनाओं का एहसास हो जाए। और जैसे ही ध्रुव ने आस्था से डांस के लिए पूछा, तब आस्था ने अपनी नानी माँ की ओर देखा। तब नानी माँ ने मुस्कुराकर उसे डांस करने की अनुमति दी। तब आस्था ने दादाजी की ओर देखा, दादाजी ने भी उसे अपनी पलके झपकाकर डांस की अनुमति दे दी। तब आस्था ने अपना हाथ ध्रुव के हाथों में थमा दिया। ये देखकर अरमान ने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो कि अरमान के सिर की नसें पूरी तरह से तन गई हों, उसकी आंखें बाहर निकलने को पूरी तरह से तैयार थीं। तभी डेविड, जो कि उस वक्त एक जगह बैठ चुका था और उसने अरमान पर अपना निशाना लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो हर हाल में अरमान की जान लेकर अपना मिशन पूरा करके अपनी प्रेमिका के साथ वापस पेरिस में अपना बचा हुआ हनीमून जारी करना चाहता था। तो इसीलिए बिना देरी किए वो अरमान की जान लेना चाहता था, क्योंकि अब सभी लोग डांस में व्यस्त हो चुके थे तो उसके लिए ये अच्छा मौका था। और वहाँ डांस फ्लोर पर बड़ा ही धीमा धीमा सा, बड़ा ही प्यारा रोमांटिक सा गीत चल रहा था। ध्रुव आस्था की खूबसूरत पतली कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था। आस्था को ज्यादा कपल्स डांस वगैरह नहीं आता था। जैसे जैसे ध्रुव उसे घुमा रहा था वो घूम रही थी। अरमान एकदम लाल सुर्ख आंखों से ये सब देख रहा था और टाइगर से बार बार ड्रिंक मंगवा रहा था। टाइगर ने जल्दी ही अरमान के इशारे पर उसे एक एक करके ड्रिंक लाकर देनी शुरू कर दी थी और टाइगर ने जल्दबाजी में प्रियंका वाली ड्रिंक अरमान को दे दी थी। वो ड्रिंक कुछ और नहीं बल्कि वही ड्रिंक थी जिसमें प्रियंका ने कुछ नशे की बूंदें मिलाई थी। और अब जैसे ही अरमान ड्रिंक पी रहा था उसे भी धीरे धीरे नशा उसके सिर पर हावी होने लगा और वो डांस करती हुई आस्था को देख रहा था, ध्रुव का हाथ देख रहा था जो कि उसकी खूबसूरत पतली कमर पर था और आस्था की मुस्कुराहट देख रहा था जो ध्रुव को देखने पर उसके चेहरे पर आ रही थी। तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक अरमान ने अपने ही हाथों में उस ड्रिंक के ग्लास को कुछ घूंट लेने के बाद छोड़ दिया, लेकिन तब तक उसके अंदर थोड़ा सा नशा चला गया था जो उसके सिर पर चढ़ चुका था। अब अरमान खड़ा हुआ और धीरे धीरे डांस फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। अब अरमान जैसे ही डांस फ्लोर पर आस्था की ओर बढ़ने लगा ध्रुव ये देख चुका था और उसने आहान की तरफ आंख मार दी थी। कहीं न कहीं उनका प्लान अब पूरी तरह से सफल होने वाला था। वो दोनों तो यही चाहते थे कि अरमान भाई पूरी तरह से जले और ईर्ष्या में आकर वो ध्रुव पर गुस्सा करें या कुछ और, तो इसीलिए अब उनका प्लान सफल होने वाला था। तभी अचानक ध्रुव ने अचानक से जब अरमान उनके बेहद करीब आ गया तब ध्रुव ने आस्था को गोल गोल घुमाया था और आस्था घूमते घूमते सीधा अरमान के सीने से जा टकराई थी।